लक्ष्मी पति का शिष्य इसी परंपरा धारा में
हमारा गुरु परंपरा धारा चलते रहते हैं, जिसके लिए ईश्वरपुरी का ऊपर चर्चा होना, ईश्वरपुरी के बारे जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंध 10 अष्टादश अध्याय श्लोक संख्या 26 10 18 26। तमुद्वहन धरणी धरेन्द्र गौरवं महाशूर विगतरय निजम्बपु स अस्थित पुरट परिच्छद बभो तोलिद्दुमानडु पोतिबारी बंबुदा तमुद्वहन धरणी धरेन्द्र गौरवम तमुद्वहन धरणी धरेन्द्र गौरव महाशूर विगत रयनिजंबपु महाशूर विगत रयनिजंबपु स्वास्थिता पुरट परिच्छद भवो स्वास्थिता पुरट परिच्छद भवो तोड़िद्दुमानडु पतिबाड़ि बंबुदा तोड़िद्दुमानडु पतिबाड़ि बंबुदा तमुद्वहन धरणी धरेन्द्र गौरवा तमुद्वहन धरणी धरेन्द्र गौरवा महाशूर विगत रयनिजंबपु स्वस्थित पुरट परिच्छदो तोलिद्दुमानडु पतिवाड़ि बंबुदा तमुद्वहन धरणी धरेन्द्र गौरवा महाशूर विगत रयनिजंबपु स्वस्थिता पुरट परिच्छद बभो तोरिद्दुमानडु पतिवाड़ि बंबुदा
चांदगुरु प्रभु डेट 10-16 फरवरी।
माता जी बोलिए बोलिए शब्दार्थ तम उन्होंने बलदेव को उद्वहन ऊंचे ले जाकर धरणी धर इंद्र पर्वतों के राजा सुमेरु के तरह गौरवम भार महा असुर महान असुर विगत रय अपना बेग खोकर निजम आपने असली बपुह शरीर को स इह अस्थित स्थित होकर पुलट सुनहरे परिच्छद आभूषण से युक्त बभई चमक रहा था तड़ित बिजली के तरह यूमन चमकीला उड़पति चंद्रमा वाट बहन करते हुए ईब सदिश अम्बुद बादल। अनुवाद तथा तात्पर्य शिल्पोपा जी के शिष्य के द्वारा जब ओ महान असुर बलराम के लिए जा रहा था तो ये विशाल सुमेरु पर्वत की तरह भारी हो गए जिससे प्रलंब को अपना बेग मंद न करना पड़ा। इसके बाद उसने अपना असली रूप धारण की तेजोमय शरीर के सुनहरे आभूषणों से उठा और उस बादल के समान लग रहा था जिसमें बिजली चमक रही है और यो आपने साथ चंद्रमा लिए जा रहा था। तात्पर्य यह पर प्रलंबासुर के उपमा बादल से उसके सुनहरे आभूषण की उपमा बादल के भीतर चमकाने वाली बिजली से तथा बलराम की उपमा बादल के भीतर चमक रहे चंद्रमा से दे गई है। महान असुर आपनी जो शक्ति से अनेक रूप धारण कर सकते हैं किंतु जब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति उनकी शक्ति के कम कर देती है तो उन्होंने अपना कृत्रिम रूप त्याग कर असली आसुरी शरीर धारण करना पड़ता है। बलराम जी सहसा विशाल पर्वत की समान भारी हो गए जिससे वो असुर उन्होंने अपने कंधे पर ऊंचे चढ़ाकर नहीं ले जा सकता है। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति शपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीचित्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं शकटजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं शाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणो ललिताशिविशाखान्वितांश्च। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तदेशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशोभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं कृत्वा चलं पुंगं लंघयते गिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। जय श्री श्री राधा गिरिधरि भगवान की जय। जगन्नाथ गुरुदेव शोध महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। हरे कृष्ण। तीस जो अध्याय प्रलम्बासुर के ऊपर चर्चा हो रही है, तो प्रलम्बासुर एक अनर्थ का प्रतीक है। अनर्थ पिछले दो तीन क्लास में कमलोचन प्रभु ने बड़े अच्छे तरीके से अनर्थ को वर्णन भी की थी कि प्रलम्बासुर एक अनर्थ का प्रतीक होने के नाते अनर्थ को किस तरीका से निर्वृत्ति करना है, उसका ऊपर आज हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। कि प्रलम्बासुर एक महान असुर, जो कि इसके पहले वाला श्लोक में भी इसका वर्णन है, इस महान असुर होने के नाते एक अलग शक्ति उन्होंने प्राप्त की थी। आज जिस शक्ति के द्वारा उन्होंने अपना रूप को भी परिवर्तन कर सकते थे, जिसके लिए एक महान असुर के कारण उन्होंने गोपो बालक का रूप धारण कर ली। और उनको पता था कि कृष्ण अपराजेय, इसके पहले वाला श्लोक में भी इसका वर्णन है कि कृष्ण अपराजेय, तो कृष्ण को मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जिसके लिए उन्होंने ये जो दो पार्टी बनाई है, कृष्ण का पार्टी और बलराम जी का एक पार्टी, तो उन्होंने कृष्ण का पार्टी में कृष्ण का पक्ष ले लिए थे। तो कृष्ण भी बड़ा चतुर है, उनको भी पता है कि प्रलम्बासुर जो आए हैं ये किसके कारण आए, और प्रलम्बासुर भी एक महान असुर, वो भी एक रूप धारण करके आए, किस कारण आए वो भी उनको पता है। तो कृष्ण सोचने लगे कि ये असुर को किसी भी तरीका से निधन करना है। तब उन्होंने एक योजना बनाई, जिस योजना का नाम है कि खेलना खेलना और कूदना। इसके पहला दिन श्री गोपीकांत प्रभु ने बताया कि आज के दिन में बच्चे लोग खेलते नहीं हैं। पहले ज़माना में ऐसा था कि बच्चे लोग का एक समय था कि प्ले ग्राउंड में जाओ, जाके खेलो, कूदो, स्विमिंग करो, लेकिन आजकल ये सब बंद हो गए। आजकल खेलना जो हो गए वो है लैपटॉप डिपेंड हो गए, कंप्यूटर डिपेंड हो गए, मोबाइल का हो गए। मोबाइल में इतने सारे खेल का आइटम है कि बच्चे को बाहर जाके खेलने का कोई जरूरत नहीं होता है। इसके लिए आज का दिन का जो बच्चा है, थोड़ा समय बाद उसको, लोकनाथ महाराज के एक लेक्चर मैंने परसों सुन रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि आज का दिन का बच्चा थोड़ा समय बाद ही बिकम ए ब्रेनलेस, और ब्रेनलेस होने का कारण कहते कि बिकॉज ऑफ लैपटॉप, बिकॉज ऑफ कंप्यूटर, बिकॉज ऑफ द हाई प्रोफाइल गेम्स इन मोबाइल्स। उन्होंने बहुत सुंदर से बताया कि आज का दिन बच्चा, भले भी लगता है माता पिता को कि बच्चा हमारा कंप्यूटर में गेम खेल रहा है, लैपटॉप में गेम खेल रहा है, हर चीज़ें, कोई ऐसा ऐसा बच्चा भी है कि खाने का समय अगर गेम नहीं मिले तो खाना खिलाना माता पिता को बड़ा कष्ट हो जाता है। एक तरीके से बच्चे को हाथ में दे देते हैं मोबाइल कि बच्चा आप तो गेम खेलो और साथ साथ वो खाना भी चालू करो। तो महाराज ने बताया उसी प्रवचन में, द बच्चा वन डे विल कमिंग, द बच्चा बिकम ए लेजी एंड बच्चा बिकम ए ब्रेनलेस। द ओनली रीजन इज, द एकमात्र तो कारण होता है कि बच्चा आजकल बाहर में नहीं जाते हैं खेलने में कूदने के लिए। कभी कोई किसी का अगर तबीयत वगैरह खराब हो जाते तो अब सोचते हैं कि नहीं अब ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन बच्चा को आजकल टाइम ही नहीं मिलता है। माता पिता बोलते हैं मेरे बच्चे का कुछ टाइम है ही नहीं, क्योंकि सुबह जाओ, जाके स्कूल से आओ, आके फिर ट्यूशन में फिर आके क्लास का पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, और जो भी थोड़ा भी अगर रिलैक्स करने का टाइम मिलता है किसी को तो रिलैक्स हो गए लैपटॉप में, नहीं तो कंप्यूटर में, नहीं तो आजकल नया नया बहुत सारे मोबाइल आए जिसमें बहुत प्रकार का खेल आए। तो लोकनाथ महाराज बता रहे थे कि ये तरीका से अगर कोई बच्चा अपना जीवन को बिताए तो एक दिन वो बच्चा ही बिकम ए ब्रेनलेस एंड ही बिकम ए क्रेजी। बहुत सारी बीमारी भी आ सकता है इसमें। आजकल एक बीमारी आ गया कि जिस बीमारी का नाम है, महाराज बहुत सुंदर बताया, मेरे को इतना पूरा याद नहीं है, उन्होंने बताया कि एक बीमारी आ गई जिसका बीमारी का नाम है थॉम्सन। थॉम्सन मतलब हाथ पैर सब ऐसा के बोलते हैं जकलिंग होता है, मतलब कंपन होता है। बोलते ये सब होने का कारण कि जब बच्चा शुरू से बाहर नहीं जाता है खेलने के लिए, कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे जाके कोई फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, कोई गेम खेले, लेकिन आजकल बच्चे को उसका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। पहले ज़माने में ऐसा था कि ठंडी का मौसम में बच्चे को बैडमिंटन खेलना पड़ता था, रैकेट दे देते थे, जाओ बाहर में जाके खेलो। आजकल वो सब बच्चे का टाइम है नहीं। पिताजी के पास एक अच्छा मोबाइल है तो चलो बच्चा कभी भी वो मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। अगर बच्चा ने वो रोना चालू कर दी तो माता आकर पिताजी से वो मोबाइल लेकर देख देते कि मोबाइल तू ले ले, बस उनका हाथ में मोबाइल दे दिए तो उसमें उन्होंने गेम खेलना चालू किया। तो इसी तरीके से बच्चा भी बीमार हो जाते हैं। तो आज का प्रसंग में पता कि किस तरीके से खेलना चाहिए था। तो प्रॉब्लम बसुर आए एक योजना लेकर, भगवान सर्वज्ञ, भगवान को पता है कि पुलम्बासुर किस कारण के लिए इस जगह पर आए। तो पुलम्बासुर का जो निवेदन था कि मैं भी खेलना चाहता हूँ, तो भगवान ने उसका पहले दो टीम बना लिए कि एक कृष्ण का टीम और एक बलराम जी का टीम। तो पुलम्बासुर आए, उनको पता था कि मैं कृष्ण के साथ मैं लड़ नहीं पाऊँगा, भले भी मैं शक्तिशाली हूँ लेकिन कृष्ण के साथ लड़ना मेरे लिए मुश्किल है। इसके लिए चलो मैं कृष्ण का पक्ष ले लेता हूँ। तो भगवान और एक बड़ा योजनाकारी, तो उन्होंने योजना बना ली कि चलो ठीक है, तो मेरा टीम में आ गया तो मैंने उनको स्वागत करूँगा अच्छा से, ही बिकम ए फ्रेंड ऑफ माई सेल्फ, वो मेरा परम मित्र है। तो मित्र रूप से स्वीकार करके भगवान उनको अपना टीम में ले लिए। लेकिन भगवान का मन में विचार था कि इस किस कारण के लिए प्रॉब्लम मशहूर आए। तो खेल का पहले का सत्र लगाया कि जो जो जीतेगा इसी तरीके से करना है, उसी तरीके से करना है। तो प्रॉब्लम बसो एक अनर्थ का प्रतीक बन गई है। शास्त्रों में वर्णन भी किया है, श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है चैतन्य शिक्षा अमृत। उसमें इसका वर्णन है कि ये अनर्थ पाप के कारण ये अनर्थ आते हैं। अनर्थ मतलब अप्रयोजनीय व्यवस्था जिसको, इस पाप का कारण इस तरीके से अनर्थ आ जाती है। अप्रणीय अप्रयोजनीय संज्ञा अननेसेसरीली डॉक्यूमेंट्स जिसको कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम बसूर इस जो अनर्थ का वर्णन है, एक अनर्थ है जिसका नाम है स्त्री लाम्पियट्य। और इस अनर्थ आते हैं पाप कर्म से द्वारा। शास्त्रों में इस पाप कर्म को गेरा क्या एकादश प्रकार में इसका विभाजित किया है। एकादश प्रकार में, एकादश रूप से इस पाप कर्म को विभाजित किए हैं। उसमें से एक पाप कर्म है जिसको कहते हैं कि लाम्पट्य। प्रलम्बासुर स्थिर लाम्पट्य अनर्थ का कारण। तो कमलेश्वर प्रभु ने शायद 4-5 दिन पहले इसको वर्णन की थी कि किस तरीका से अनर्थ को निवृत्ति करना है। इस लाम्पट्य श्री भक्तिविनोद ठाकुर इस लाम्पट्य को भी तीन प्रकार में विभाजित किए। पहले तो पाप कर्म को एकादश भाग में विभाजित है, बाद में एकादश भाग में एक भाग है जिसका नाम है लाम्पट्य। इस लाम्पट्य तीन भाग में विभाजित है। उसमें पहला भाग है अर्थ लाम्पट्य, दूसरा है स्थिर लाम्पट्य और तीसरा है प्रतिष्ठान लाम्पट्य। तो प्रलम्बासु स्थिर लाम्पट्य अनर्थ का कारण। स्थिर लाम्पट्य का व्याख्या किया है भक्तिविनोद ठाकुर कि स्थिर लाम्पट्य एक बृहद पाप कर्म है। उन्होंने कहा इस शास्त्र में कि पड़ोसी संग करना तथा कोई वेश्या तथा प्रोस्टिट्यूट का संग करना ये स्थिर लाम्पट्य का सबसे बड़ा कारण है। विवाहित तो स्त्री को छोड़कर कोई अगर दूसरा कोई स्त्री के ऊपर उनका आसक्ति हो जाए तो उसको कहते हैं स्त्री लाम्पट्य। जैसा कि विवाह होने का समय इसमें भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि विवाह होने का समय एक मंत्र तो उच्चारित होता है कि ज्योतितं हृदयं मम, आज से मैंने अपना हृदय आपने को समर्पित किया। तो जब दोनों का विवाह होता है, जिसको विवाह उनको जरूर अच्छे तरीके से पता है कि विवाह होने का समय पंडित जी तथा ब्राह्मण ने ये मंत्र को उच्चारित होते हैं ज्योतितं हृदयं मम, मतलब आज से मेरा हृदय आपका हृदय एक है। लेकिन वो मंत्र उच्चारित होने के बाद भी व्यक्ति पड़ोसी मतलब दूसरे का स्त्री के ऊपर जो जिसका आसक्ति होते है उसको कहते हैं कि लाम्पट्य। इस लाम्पट्य को तीन भाग में विभाजित किए कि पहला अर्थ मतलब धन, धन के द्वारा व्यक्ति आसक्त हो जाते हैं और जिसको कहते हैं कि अर्थ लाम्पट्य। स्त्री लाम्पट्य मतलब दूसरे स्त्री के ऊपर किसी को आसक्ति हो जाता है। और तीसरा वर्णन के कि प्रतिष्ठान लाम्पट्य। प्रतिष्ठान लाम्पट्य भक्तिविनोद ठाकुर ये चैतन्य शिक्षा में ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं कि प्रतिष्ठा लामपट्ट का अर्थ है कि आप सोच लीजिए कि आपने एक फ्लैट बाड़ी में रहते हो, एक फ्लैट में कोई एक बड़ा टावर है, उसमें आपने एक फ्लैट आपने खरीद कर ली, तो उसी फ्लैट में आप हो, आपका बाजू वाला हो सकता है कि आपसे थोड़ा ऊंचा कोटि का है धन में ज्ञान में हर तरीका से, तो आप इतने उनको सर लड़ाई करने के लिए आपका पास इतना धन भी नहीं है ज्ञान भी नहीं है। हो सकता है कि अपना बाजू वाला फ्लैट वाले तो बहुत पढ़ाई की है बहुत धन कमा रहा है, तो आपका इतना है नहीं, तो आप सोच रहे हो कि उसके ऊपर आपका जलन होता है। इस जलन का कारण इसको बोलते हैं कि प्रतिष्ठा लामपट्ट। तो हर व्यक्ति अपना समाज में अपना सोसाइटी में प्रतिष्ठा चाहते हैं। भक्तिशांत सरस्वती ठाकुर ने बताया कि नाम जश प्रतिष्ठा शुकुरेर विष्ठा छाड़ी आछे जारे सेई तो वैष्णव। इस नाम जश का पीछे हम लोग भगते हैं। महाप्रभु ने स्वयं बताया कि न धनम न जन्म न सुंदरी कवितांग जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि शरे भगवतार भक्ति होई चकित। तो जो व्यक्ति इस तरीके से अपना जस को बढ़ाने के लिए उनका मन में थोड़ा आसक्ति हो जाते हैं, इसको कहते हैं कि प्रतिष्ठा लाभ। तो ये सब लामपट्टियों को इस प्रकार अनर्थों से निर्वृत्ति कैसे होता है, भक्तिविनोद ठाकुर इसमें वर्णन कर रहे कि निर्वृत्ति होने का एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग, वो है आपने को भक्ति मार्ग में रखना। कैसे आप भक्ति मार्ग में रह सकते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसमें वर्णन कर रहे कि जारो मुखे भाई होरी कथा नाई तारो मुखो पाने चेओ ना, जाके देखे तुमी भूले जाबे होरी तारे काछे तुमी जेओ ना। ऐसा पुकार व्यक्ति को आपको संग करना है जिसको देखकर आपने भगवान को स्मरण कर सकते हो, जिसको देखकर आपने भगवान का लीला का स्मरण कर सकते हो, आज जिसको देखकर अपने भगवान को भूल जाते हो उसको कभी देखने का नहीं। कहते हैं कि मुखो दर्शन कोड़ी बना तब वृथा तोमा पालीलाम रात सवा तब सुजोग्य ठाई नए ब्रज धाम। जीव को समीप आए थे वृंदावन में, थोड़ा ही गलती कर लिए थे उन्होंने, तो लोगों को समय इतना क्रोधित हो गए थे उनके ऊपर कि कहने लगे कि मुखो दर्शन करीब ना तब वृथा तोमा पालीलाम रात सवा तब सुजोग्य ठाई नए बोझना। आप वृंदावन में रह कर लायक आप नहीं हो, क्योंकि आपका हृदय में अभी भी कपटी भरी हुई है। बहुत समय तक रूप गोस्वामी बाद जीव गोस्वामी के दर्शन भी नहीं किए थे। रूपो विलास ग्रंथ में इस लीला को बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया। तो यही अनर्थ निर्वृत्ति का एक ही मार्ग होता है जिसको कहते हैं कि भक्ति योग। तो पूर्णबसुर ऐसा एक योजना बनाकर आए थे कि मेरे को किसी भी तरीका से, भक्तिविनोद ठाकुर इसमें वर्णन कर रहे हैं कि पूर्णबसुर एक योजना बना के आए कि किसी भी तरीका से मैंने अपना जीवन में मैंने बहुत कुछ किया हूं, ही इज ए सिंबल ऑफ द अनर्थ। तो मैंने अपना जीवन में मैंने बहुत कुछ किया, तो इसी जीवन को अगर सुधारना है तो मेरे को इसी तरीके से सत्संग को प्राप्त करना है, जिसके लिए प्रेरणा शुरू आए थे। तो ये अनर्थ निर्वृत्ति भक्तिविनोद ठाकुर का एक किताब है दशमूल शिक्षा। कुछ दिन पहले कमलोचन प्रभु बोल रहे थे कि दशमूल शिक्षा का ऊपर एक चर्चा होंगे एक हफ्ता तक, कि ये दशमूल शिक्षा विशेष रूप से भक्ति मार्ग में जानकारी प्राप्त करना चाहिए सबको। ये दशमूल शिक्षा। तो इस दशमूल शिक्षा में एक चैप्टर होता है जिसका नाम है निर्जांच। इस निर्जांच अध्याय में भक्त विनोद ठाकुर इसका ऊपर वर्णन की कि भक्ति जीवन में हर व्यक्ति को बहुत तरीका से संकट में आ जाते हैं। कोई भी कभी कभी भक्तों का मन में सोचता है प्रभु जी मैं तो बड़ा दुखी हूँ। तो भक्त विनोद ठाकुर ने बताया इसमें कि ये दुखी होने का कारण जब मैं संबंध टूट जाते हैं मूल व्यक्ति स्वरूप जिसके साथ मेरा संबंध होना चाहिए था उस संबंध जब टूट जाते हैं हमारा तब जीवन में व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है। तीर प्रलंबा सूर ये भी उनका मन में कुछ दुख आए थे तो दुख का कारण उन्होंने सोचा कि ये असली संबंध जिसके साथ होना चाहिए था क्योंकि अनर्थ का ये नेक्स्ट जो स्टेप प्रवृत्ति जो स्टेप होता है उसको कहते हैं कि दुख। तो दुख को निभाना है अगर तो साधु संघ के द्वारा ही निभा सकते हैं। साधु संघ सर्वशास्त्र कहे। तो आइए आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्योंकि समय कम 10 मिनट है। ईश्वरपुरी का ऊपर शास्त्र में बताया कि ईश्वरपुरी ऐसा एक महान चरित्र है जिनके नाम के द्वारा गुरु परंपरा धारा किस तरीके से है इसका हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी का शिष्य है। और यही ईश्वरपुरी से स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दीक्षा ग्रहण की थी। और जिस माधवेंद्रपुरी को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु उनका गुण कीर्तन की सुनो सुनो नित्यानंद करो विचार पूरी सम भाग्यवान जगते नहीं आर। सुनो सुनो नित्यानंद करो विचार पूरी सम भाग्यवान जगते नहीं आर। ऐसे एक महान माधवेंद्रपुरी जिन्हें इतनी भाग्यवान है कि स्वयं भगवान आकर उनको तीन तीन बार उनको दर्शन दिए। और यही माधवेंद्रपुरी पद का शिष्य है ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी का जन्म स्थान इसमें से शायद बहुत सारे भक्त गए हैं जिसका नाम है हाली शहर। जिस जगह का नाम हाली शहर से भी ज़्यादा अधिक से अधिक परिचित है चैतन्य डोवा नाम से। तो इस चैतन्य डोवा नाम क्यों हुआ क्योंकि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन से पानीहाटी आए थे पानीहाटी होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी पास का जन्म स्थान हाली शहर बोलते हैं। पानीहाटी से थोड़ा नज़दीक है ये तो हाली शहर में आए। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी का जन्म स्थान को दर्शन किए तब कहने लगे कि ईश्वरपुरी रो जन्म स्थान ए मित्तिका अमार जीवन धन प्राण। ईश्वरपुरी रो जन्म स्थान ए मृत्तिका मतलब मिट्टी ए मृत्तिका अमार जीवन धन प्राण जो कि चैतन्य भागवत का श्लोक है। ये मृत्तिका अमार जीवन धन प्राण। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जन्म स्थान को दर्शन किए ईश्वरपुरी का तो उसी मिट्टी को लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु अपना पूरा शरीर में तिलक धारण की थी और अपना कपड़ा में बांधकर थोड़ा मिट्टी उन्होंने लेकर आए। तब से आज तक ये विधि है, कोई भी गौड़ीय भक्त श्री गोपाल जी वर्णन किए हैं कि ये ईश्वरपुरी का जन्म स्थान जो है हाली शहर, जो कि गौड़ीय वैष्णव समाज का सामने एक तीर्थ स्वरूप। क्यों तीर्थ स्वरूप है? जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु पदार्पण की थी और जिनसे श्री चैतन्य महाप्रभु दीक्षा ग्रहण की थी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जिस जगह का मिट्टी को लेकर अपना शरीर में लेपन किए और थोड़ा मिट्टी को लेकर अपना कपड़ा में बांध कर लेकर गए, बीच बीच में उन्होंने ये मिट्टी खाना भी चालू करते थे। श्री गोपाल जी इस मिट्टी का ऊपर वर्णन की कि ये मिट्टी का अमर जीवन धरण जीवन धन प्राण, कहते कि कोई भी गौड़ीय वैष्णव भक्त अगर इस मिट्टी का को इस मिट्टी को अपना मस्तक में धारण करे, अपना मस्तक में थोड़ा समय की ओर रखे, जैसे कि वर्णवाली प्रभु एक बार बहुत साल पहले जब नवद्वीप धाम परिक्रमा की थी, हर जगह से हर धाम से उन्होंने बहुत सारे मिट्टी को लेकर आए, सही है कि नहीं? तो श्री प्रभुपाद जी वर्णन करें कि कोई भी भक्त अगर श्रद्धा पूर्वक इस मिट्टी को अपना मस्तक में रखे तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आकर आपको दो हाथ पकड़ के श्री चैतन्य धाम में आपको लेकर जाएंगे, जिसके लिए जगह का नाम है चैतन्य डूबा। आज भी ये विधि है, कोई भी गौड़ीय वैष्णव इस जगह को दर्शन करने के लिए आए तो दंडवत प्रणाम करने के बाद उसी जगह से थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी लेते हैं, नहीं तो पहले ऐसा प्लेन रोड था, प्लेन जमीन। तो इसी तरीके से जब लेना चालू की थी तब एक को देखकर दूसरे, दूसरे को देखकर तीसरा, तीसरे को देखकर चौथा, एक विधि हो गए जिसके लिए वो जगह का नाम हो गया, एक तालाब बन गए थे उसमें। जिनने गए उनको जरूर याद होगा कि इस चैतन्य डोबा में एक बहुत ही सुंदर एक मंदिर है जो कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन के सामने बना है। श्री गोपाल जी का एक ट्रस्ट है, भक्ति वेदांत स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट BSCT, तो भक्ति वेदांत स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट का द्वारा इस चैतन्य डोबा में बहुत ही सुंदर एक मंदिर बनाए जिसमें राधा मदन मोहन जी विग्रह है और ईश्वरपुरी बात का भी एक बहुत ही सुंदर विग्रह उधर है जिसका सेवा पूजा चलते रहता है इस्कॉन का माध्यम से। और यही ईश्वरपुरी पाद जब पहली बार मायापुर में आए, पहली बार उनको श्री चैतन्य महाप्रभु को दर्शन नहीं मिले थे, पहली बार जब उन्होंने आए, मैं संक्षिप्त रूप से बता रहा हूं क्योंकि समय कम है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु मायापुर धाम में अध्ययन लीला चल रहे थे उनका, मतलब पढ़ाई, इस पढ़ाई का समय जब ईश्वरपुरी पाद मायापुर में आए तब उन्होंने अद्वैत आचार्य प्रभु को मिले। चैतन्य भागवत में एक श्लोक में वर्णन किए है, तान बेसे ताने के हो चिनी ते ना पारे। ये तान ये शब्द को दो बार प्रयोग किए है वृंदावन दास ठाकुर, तान बेसे ताने कहो चिनी ते ना पारे। पहला जो तान शब्द है ये है दैन्य भाव, श्री प्रभुपाद इसमें वर्णन कर रहे हैं, तान बेसे ताने केहो चिनी ते ना पारे। पहला जो तान शब्द है ये है दैन्य भाव और दूसरा तान मतलब वैष्णव का प्रतीक साधुर भूषण। तो श्री ईश्वरपुरी पाद जब अद्वैत आचार्य को मिले तो अद्वैत आचार्य प्रभु उस समय भगवान का सेवा कर रहे थे, तो अद्वैत आचार्य प्रभु बहुत समय तक उनको देखे, ईश्वरपुरी को बहुत समय देखने के बाद उन्होंने पूछने लगे अद्वैत आचार्य प्रभु, वैष्णव सन्यासी तुम्हें हेन लय मने, आप कौन हो? मेरे को तो पता नहीं है आप कौन हो। तब ईश्वरपुरी पास कहने लगे, आमी शूद्राधम, मतलब मैं एकदम नीच जाति का हूं, देखी बारे आईलाम तुम्हारो चरण, मैंने एकदम नीच जाति का हूं, मेरा कोई कुल बोलकर, कोई वंश बोलकर, कोई फैमिली बोलकर कुछ भी नहीं है, देखी बारे आईलाम तुम्हारो चरण, मैंने सिर्फ आपका चरण दर्शन करने के लिए मैंने आया। तो इसलिए प्रभुपाद इसको वर्णन की कि ताने बेशे ताने कहे देखी बारे तान, तो इतने दुइन भाव से, मोर एंड मोर हम्बल, इतने दुइन भाव से जब उन्होंने आए हैं, तो अद्वैत आचार्य प्रभु निश्चित हो गए कि ये एक महान वैष्णव। तो अद्वैत आचार्य प्रभु के साथ उसी समय मुकुंद दत्त भी थे, तो मुकुंद दत्त राधा कृष्ण लीला का ऊपर उन्होंने एक भजन, एक संगीत चालू की थी उसी समय। तब मुकुंद दत्त का मुखार से ये भजन को सुनकर ईश्वरपुरी पाद प्रेम में मूर्छित हो गए और सब कृष्णबिंदु आकर उनको पकड़ लिए। तब सबको पता चले कि ये है परम पूज्य ईश्वरपुरी। तो ये ईश्वरपुरी जब श्री चैतन्य महाप्रभु को मिले थे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर स्तंभित हो गए थे कि इतने सुंदर बालक, पहले भी सुना था कि निमाई पंडित है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनका धन्यवाद प्रणाम की, तो आपने घर में लेकर आए, तो अच्छे तरीके से सेवा वगैरह की, ऐसे तरीके से संग होने नाते एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु उनको पूछने लगे कि आप मेरे को कृपा करो, मैंने आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। देखिए स्वयं भगवान होकर भी कहने लगे कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। पूरी तक उसी समय है ईश्वरपुरी पद कहने लगे, मंत्र बा बोलिया कौन कथा, प्राण आमी दीते पड़ी तुम्हारे सर्वथा। आप मेरे पास मंत्र मांग रहे हो, मैं मंत्र नहीं हूं, मैं आपके लिए प्राण तक मैं विसर्जन दे सकता हूं। प्राण आमी दीते पारी तुम्हारे सर्वथा, मैं आपके लिए प्राण तक मैं दे सकता हूं। और यही ईश्वरपुरी पर एक ग्रंथ रचना की थी जिसका नाम है कृष्ण लीलामृत। तो कृष्ण लीलामृत एक दिन ईश्वरपुरी पाद ने निमय पंडित को बोले, मैंने सुना हूं कि आप पंडित व्यक्ति हो, आपको बहुत सारे शास्त्र जानकारी है, बहुत अध्ययन भी आपने किए हो, लेकिन मैंने एक ग्रंथ रचना किया हूं कृष्ण लीलामृत, ये लीलामृत मैंने आपको पढ़ के सुना रहा हूं, आप जरा मेरे को बताओ कि इसमें से क्या क्या गलती है। तो महाप्रभु ईश्वरपुरी पाद से ये कृष्ण लीलामृत सुनने के बाद कहने लगे, भक्तेर मुखे है भगवानेर वर्णन, इहाते जे दोष देखे सेई है पापी जन। मतलब भक्त का मुखार बिंद से भगवान का गुण कीर्तन है, इसमें अगर कोई व्यक्ति सोच ले कि इसमें कुछ गलतियां है, मतलब दुनिया में सबसे बड़ा पापी व्यक्ति ही होता है। इस प्रसंग में श्री प्रभुपाद जी प्रभुपाद डायरी में भी लिखे हैं कि कभी कभी हमारे मन में विचार आ जाते हैं कि भागवत कथा उसी व्यक्ति के मुख से सुनना है जो कि भगवान के साथ संबंध युक्त है। तो कोई भी अगर कथा करे मतलब वो निश्चित रूप से भगवान के साथ संबंधित है और भगवान के साथ संबंधित होने का नाते ही वो भगवत कथा कर सकते हैं। तो कहने लगे कि बोले न ईश्वर पुरी सुनो हो पंडित तुम्हें जे ईश्वर अंश जानी नो निश्चित। मेरे को पता है कि आप स्वयं ईश्वर हो, आपका कार्य कलप मेरे को सब कुछ जानकारी है, फिर भी इस लीला में भाग लेने के लिए क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु लोको जनो शिक्षक कहते कि जगत गुरु, जगत को शिक्षा देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में भक्त रूप लेकर आए, जिसके लिए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का माध्यम होता है गुरु ग्रहण करना, जिसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान होकर भी उन्होंने ईश्वरपुरी को गुरु रूप से स्वीकार की थी। ये तो स्वयं ईश्वर, जिसमें इसमें वर्णन भी किया है कि जतो प्रीत ईश्वरेर ईश्वरपुरी रे, जतो प्रीत ईश्वर ईश्वरपुरी रे, मतलब ईश्वरपुरी का सबसे ज्यादा संबंध है भगवान के साथ। तो यही भगवान के साथ संबंध होने का कारण सबसे ज्यादा ईश्वरपुरी को उन्होंने संबोधित की थी। तो ऐसा एक महान चरित्र है ईश्वरपुरी पाद, जिनकी आज तिरुभाव तिथि, किस तरीके से उनका तिरुभाव है इसका वर्णन चैतन्य भागवत ग्रंथ में नहीं किए हैं वृंदावन दास ठाकुर, चैतन्य मंगल में भी नहीं है, लेकिन स्थानीय कोई ग्रंथ मिलता है, जैसे कि हाल ही शहर में एक ग्रंथ मिलता है कि जिसका नाम है चैतन्य डोबा। इस चैतन्य डोबा ग्रंथ में ईश्वरपुरी किस तरीके से उनका तिरुभाव हुई इसको वर्णन किया थी। जब माधवेंद्र पुरी पाद वार्धक्य अवस्था प्राप्त हो गए थे तब माधवेंद्र पुरी को मलमूत्रादि त्याग और मलमूत्रादि सेवा ये ईश्वरपुरी पाद में किए थे, और यही ईश्वरपुरी पाद जब वार्धक्य अवस्था प्राप्त हो गए थे उनके एक सेवक थे जिनका नाम है गोविंद, जिस गोविंद ईश्वरपुरी को सेवा कर रहे थे, जीवन का अंतिम मुहूर्त जब आ गए उनको तब गोविंद सेवा करना चालू की, और ईश्वरपुरी कहने लगे कि गोविंद आप मेरे लिए थोड़ा तुलसी और जल लेकर आओ। तो तुलसी और जल लेकर आए गोविंद और कहने लगे कि आप भगवान का नाम उच्चारण करो, और भगवान का नाम उन्होंने उच्चारण कर रहे थे और गोविंद थोड़ा थोड़ा करके तुलसी और जल ईश्वरपुरी को मुखारविंद डालने लगे, और ईश्वरपुरी स्थानीय ग्रंथ में इसका प्रामाणिक क्या है मेरे को पता नहीं, जो मैंने स्थानीय ग्रंथ मिला था मेरे को जब मैंने चैतन्य डोबा दर्शन करने के लिए गए तो उसमें वर्णन किया है कि जीवन का अंतिम मुहूर्त में ईश्वरपुरी पाद गोविंद को हाथ पकड़ ली थी और हाथ पकड़ के कहने लगे गोविंद आप जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु को सेवा करना। नयनेरो जले तुमी भाषिब ताहार, ताहारो चरण करो पद भुज आर, ताहारे सेवाय जे जन करे तो राही रास, ताहारो पाद पद्मे तुमी धरित ববাস। ये चैतन्य लोगों का एक स्थानीय ग्रंथ है जिसमें इसका वर्णन किया है कि मेरा अंतिम इच्छा है कि मैं इस धाम से, इस धराधाम से अप्रकट होने के बाद आप जाकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सेवा करें। तो गोविंद ईश्वर गुरुदत्त का अप्रकट होने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवा करने के लिए आए, तो श्री चैतन्य महाप्रभु पहले उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब उन्होंने सुना कि ईश्वर परिपाद ने स्वयं भेजे, तब गुरु आज्ञा को उन्होंने स्वीकार की थी। गुरु को आज्ञा को शिरोधार्य करके गोविंद को उन्होंने अपना सेवक रूप से नियुक्त किए थे। और गोविंद किस तरीके से सेवा किए सबको पता है। तो यही जीवन का अंतिम मुहूर्त में ईश्वर परिपाद ने गोविंद को निर्देश दिया कि आप जाओ, करो गिया तुम्हें तारे महाप्रभुर सेवा। इसके ऊपर करो गिया करो तुम्हें महाप्रभुर सेवा, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे चर्चा है। तो स्थानीय ग्रंथों में इसका ईश्वर परिपाद का अप्रकट लीला को व्यक्त किया है। तो नहीं तो कोई भी प्रामाणिक ग्रंथ जैसे कि चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, प्रामाणिक ग्रंथों में ईश्वर परिपाद का अप्रकट के ऊपर कोई वर्णन नहीं किए है, कोई भी आचार्य नहीं। से स्थानीय जो ग्रंथ मिलते हैं, कोई कोई जगह में ऐसा गौर पार्श्वस्थली है जहाँ पे हमारा प्रामाणिक ग्रंथ जैसा है कि चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, चैतन्य चतुर्मुखी, इसमें बहुत सारे ग्रंथ में वर्णन नहीं है, लेकिन प्रामाणिक ग्रंथों छोड़कर कोई स्थानीय ग्रंथ मिलते हैं जो कि वो लोग परंपरा धारा से सुनकर आए, तो उसके ऊपर बहुत सारे ग्रंथ में इसका वर्णन किया है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम। श्री ईश्वर गुड़ी बात की ईश्वर गुड़ी तिरुभाव तिथि उत्सव की जय निदाय गौर प्रेम कृष्ण। जिन्होंने अभी तक दर्शन नहीं किए चैतन्य डोबा जो कि यमद्वीप धाम परिक्रमा में जा रहा है, तो कृपा करके चैतन्य डोबा को दर्शन करके आइए और उधर का मिट्टी भी लेकर आइए साथ में। तो बनवाली को भी एक बार लेकर आए थे, उनको मुझसे मिट्टी के द्वारा, उनका ही मुख से मैंने सुना था कि वो मिट्टी के द्वारा उनको पुनर्जीवन प्राप्त हुए। हरे कृष्ण।